शेष रहा है उसे हम क्या और बेहतर बना सकते हैं, क्या हम और बेहतर ढंग से जी सकते हैं। हमने पिछले दिनों अपने जीवन को बेहतर बनाने के बहुत से भी उपायों पर विचार किया है। असल में यदि हम रोज रोज भी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें तो कोई वजह नहीं है कि हमारा जीवन जैसा हम चाहते हैं, मेरे ख्याल से जैसा हम जीते हैं उससे भी अच्छा जीवन हम जीना चाहते हैं। हमें मालूम होता है कि हमें कैसे जीना चाहिए और हमें यह भी मालूम होता है कि हम किस तरह जी रहे हैं, पर जिस तरह जीना चाहिए उसके लिए कोई प्रयत्न या कि पुरुषार्थ नहीं करते। और कई बार तो ऐसा लगने लगता है जैसे कि जीवन के एक रेले में और हम सब बस जिस किसी तरह से जीते चले जा रहे हैं, और एक दिन जब जीवन पूरा होता है, मृत्यु निकट आती है, तब एहसास हो पाता है कि अरे अब क्या करूं, मुझे तो ये करना बाकी रह गया, मुझे तो इस तरह से जी लेना चाहिए था। तो इससे बेहतर क्यों ना हम आज ही उस चीज का विचार कर लें कि मुझे कैसे जी लेना चाहिए, ताकि बाद में एक असंतोष, एक अतृप्ति, पूरी तृप्ति के साथ कि हां मुझे जिस तरह जीना था मैंने उसने पूरे आनंद के साथ अपना जीवन जिया है, ऐसी तृप्ति के साथ हम इस जीवन को पूरा जी सकें, इसके लिए हम प्रयास करें। असल में जिस तरह का हम जीवन जीते हैं उसमें हम अधिकांश समय अपने शरीर और अपने शरीर से संबंधित वस्तुओं और व्यक्तियों के इर्द गिर्द जीते हैं। थोड़ा सा विचार करना आप भी मेरे साथ, अधिकांश समय बहुत थोड़े से क्षण ऐसे होते हैं जब हम अपने आत्मा के बहुत निकट होते हैं, हम अपनी मौलिकता अपनी वास्तविकता के बहुत निकट होते हैं, या कि ऐसा समझ लें कि हम अपनी मौलिकताओं का सही सही उपयोग करते होते हैं। हमारी मौलिकता है विचार की क्षमता, हमारी मौलिकता है। हमें मन मिला है, हमें वाणी मिली है अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए, अपने विचारों को डायनेमिक बनाने के लिए, गतिशील बनाने के लिए हमारे पास मन है, उनसे हम विचार कर पाते हैं। ये सब हमारी अपनी अपनी निजी क्षमताएं जो हमने किसी अपने पुराने पुरुषार्थ के द्वारा हासिल की है, इनका हम यदि सदुपयोग कर लेते हैं तो मैं सोचता हूं कि वह भी पर्याप्त है इस एक जीवन के अच्छे बनाने के लिए। लेकिन क्या करें, हम इस तरह से एडिक्ट हो गए, इस तरह से हमारे जीवन में कुछ चीजें आ गई हैं, हो सकता है हमारे अनसोचे आ गई हो, हमारे अनचाहे आ गई हो, लेकिन आ तो गई हैं, हमारे वातावरण की वजह से आ गई हो, हमारी अपनी अज्ञानता तो उसमें कारण है ही कि हम उन चीजों को अपने जीवन से निल नहीं कर पाते हैं, निकाल नहीं पाते हैं। और ऐसे लगता है जैसे कि हम मजबूर हो गए हैं, जिस तरह जी रहे हैं उस तरह जीने के लिए हम मजबूर हो गए, ऐसा कई बार लगने लगता है। लेकिन ऐसा हर समय ऐसा ही होता हो ऐसा नहीं है, कुछ समयों पर हो सकता है लेकिन हर समय हम मजबूर ही हो नहीं, अधिकांश समयों पर तो अगर गौर से देखें तो हमारी अपनी कमजोरी की वजह से हम अपने जीवन को कोई स्टाइल प्रॉपर नहीं दे पाते हैं, और जैसा चल रहा है बस चलने दो, कौन मुश्किल में पड़े, कौन परिवर्तन करे, चाहते जरूर हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति नई साइकिल खरीदने गया दुकानदार के पास, तो दुकानदार से पूछा कि ये साइकिल कितने की मिलेगी, तो उसने कहा इतने इतने रुपए की मिलेगी, बहुत अच्छी बात, कोई गारंटी वारंटी है, उसने कहा है साहब गारंटी क्यों नहीं, आप ठीक ठीक ढंग से चलाएंगे तो साल भर की गारंटी, उसने कहा ठीक ही तो चलाऊंगा, जब खरीद रहा हूं तो ठीक नहीं चलाऊंगा क्या, कोई भी हो, तो उसने कहा फिर तो एक साल की गारंटी दे सकता हूं, उसने ले ली, बोले फिर से सोच लो आप, एक साल की पूरी गारंटी, कोई टूट फूट नहीं होगी गाड़ी में, उसने कहा नहीं कोई टूट फूट नहीं होगी, उसने कहा ले ली गाड़ी, लेके गया वो, दूसरा ग्राहक अभी आ ही नहीं पाया और 10-15 मिनट में वो वापस आ गया, टिका दी उसने साइकिल, ऐसे रख लो नहीं चाहिए लौटाओ पैसे वापस, इतनी बेईमानी, उसने कहा क्या हुआ साहब, अभी तो आप ले गए थे और 10 मिनट में क्या हो गया, बोले किस बात की गारंटी दी थी, कोई टूट फूट नहीं होगी, उसने कहा हाँ यही तो गारंटी दी थी कि कोई टूट फूट नहीं होगी, वो आया बाहर देखा उसने साइकिल दुरुस्त, कुछ भी नहीं टूटा, कहीं भी कुछ वो जो कागज उस पर नए लगे थे वो तक नहीं फटे, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा कि कुछ भी नहीं टूटा इसमें और आप व्यर्थ में जो है मुझे इतनी बातें कर रहे हैं, उसने कहा कुछ भी नहीं टूटा, इधर देखो ये चश्मा और दो दांत ये नहीं टूटे, आपने गारंटी किस बात की दी थी, कोई टूट फूट नहीं होगी, उधर मेरा चश्मा गिर गया और दांत टूट गए उसके, वो कोई टूट फूट नहीं। ये जो मैं कहानी इसको पढ़ता हूं जब सुनाता हूं तो बहुत मजा आती है, लेकिन अपने जीवन में झांक के देखें, बाहर कुछ टूट फूट जाता है तब तो हम सोचते हैं कि टूट गया है कुछ, और इधर भीतर जीवन टूटता चला जाता है, जीवन पतित होता चला जाता है तब जरा भी महसूस नहीं होता। गाड़ी में कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए इसका पूरा ध्यान रखा गया था, लेकिन गाड़ी पर जो बैठा हुआ है उसका जीवन भी साबुत होना चाहिए था, इस बात का भी तो ध्यान रखना चाहिए। ये शरीर, इसकी टूट फूट, इसके पतित हो जाने का जितना हमें जितना अधिक ख्याल है मेरे ख्याल से, उतना अधिक अगर अपने पतित होने, अपने जीवन के टूट फूट जाने का भी अगर ख्याल आ जावे तो कोई वजह नहीं है कि हम अपने जीवन को बेहतर ना बना पाए। टॉलस्टॉय ने हर आदमी को अपने जीवन से 6 प्रश्न पूछने के लिए कहा, कम से कम 6 प्रश्न। विचार करें अपन उन 6 बढ़िया प्रश्नों पर। पहला प्रश्न वो कहता है कि हर आदमी को अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं किसके लिए जीता हूं। तो हर कोई ऐसा सोचता है कि मैं अपने परिवार के लिए जीता हूं, मैं अपने समाज के लिए जीता हूं, मैं अपने राष्ट्र के लिए जीता हूं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ऐसा प्रश्न पूछने पर आपने इतना बढ़िया जवाब दिया। जरा गौर से विचार करिएगा इस जवाब देते समय, क्या आप जब नहीं थे तब आपका परिवार आपकी अनुपस्थिति में जी नहीं पाता था क्या? आपके नहीं होने पर क्या ये दुनिया जीना स्थगित कर देगी? क्या ये संसार ठहर जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तब फिर मैं किसके लिए जी रहा हूं? अब जवाब दीजिएगा। अब बहुत मुश्किल हो गई। अगर ये बात हमारे भीतर आ जाए तो पहली चीज तो हमारा अहंकार टूट जाएगा कि सचमुच मैं तो सोचता था कि मैं इनके लिए जी रहा हूं, मैं इनके लिए जी रहा हूं, मेरे नहीं होने से इनका जीवन खतरे में है, इनका जीवन खतरे में नहीं। सब अपनी अपनी तरह से जी रहे हैं यहां पर। हम तो सिर्फ एक अहंकार पाल के जीने लगते हैं कि मेरी वजह से सारा संसार चल रहा है। ठीक ऐसे ही जैसे कि एक बैलगाड़ी के नीचे धूप में एक बकरी खड़ी हो गई और फिर बैलगाड़ी चली तो वो धूप भी आगे आगे चली, वो छाया भी आगे आगे चली तो उस छाया में वो भी चलने लगी और थोड़ी देर में तो वो सोचने लगी कि बैलगाड़ी मेरे ऊपर चलती है। हम अपने परिणामों को स्वयं जीते हैं, अपने लिए जीते हैं। किसके लिए जीते हैं? अगर हम ऐसा सोचें तो हमें सिर्फ अहंकार ही आता है। नहीं, हमारे जीवन में सब हमें सहयोग दे रहे हैं, हम भी सबके सहयोगी बनकर जीवन जिएं। लेकिन ऐसे कर्तापन से, ऐसे अहंकार से मुक्त रहें कि मैं सबके लिए जी रहा हूं, यह सब मेरे लिए है। हां, जैसे सब मेरे लिए ही है, मैं सेंटर पर हूं और सब मेरी परिधि पर है। सबको मुझे, जैसे कि सबको मैं ही जिला रहा हूं या कि सबके लिए मैं ही रेगुलेट कर रहा हूं, मैं ही उनका जीवन व्यवस्थित कर रहा हूं, ऐसा नहीं। शिवाजी के गुरु रामदास थे। शिवाजी ने बहुत अच्छे अच्छे काम करे और एक बार तो अकाल पड़ जाने से उन्होंने सबको थोड़ा थोड़ा काम दिया कि हम काम देंगे और आपको कुछ ना कुछ, बिना उसके देंगे तो आप परावलंबी हो जाएंगे, इसलिए कुछ काम करो फिर हम देंगे। देना तो है ही हमें, सारा कोश खाली हम कर देंगे आपकी सेवा में, लेकिन थोड़ा काम करो। बारिश नहीं हुई है तो तब तक अपन इन रास्तों को दुरुस्त कर लो और कुछ नहरें निकाल लो, कुछ तालाब बना लो, जब बारिश होगी तो ये सब काम आएंगे, उस बीच में अपन काम करो, उस काम से हम तुम्हें सबको अनाज देंगे। और सब लोग काम में लग गए। अब खड़े हैं हाथ बांधे शिवाजी और देख रहे हैं कि देखो मैंने कितने लोगों को आजीविका दे दी, कितने लोगों को इस तरह से मैंने मदद कर दी। थोड़ा सा अहंकार आ गया उनके। रामदास उनके गुरु देख रहे हैं, 2-3-4 दिन देखा कि अब मेरे शिवा को, मेरे शिष्य को धीरे धीरे कर्तव्य के स्थान पर अहंकार आने लगा है। तो एक दिन उन्होंने कहा कि शिवा, वो जो रास्ते में एक चट्टान पड़ी है तू उसे क्यों नहीं तोड़वा देता है? रास्ते में बहुत निकलने वालों को दिक्कत होती, अभी करवा देता हूं। और फौरन मजदूरों को ले जा करके रामदास भी उनके साथ में गए हैं, खड़े हैं। वे जानते थे इस चीज को, पहले से उन्होंने अपने ज्ञान से जान लिया था। और जैसे ही वो शिला तुड़वाई तो शिला में, एक शिला के भीतर से, कोई नहीं जान सकता था उस शिला के भीतर से, और एक मेंढक उचक करके बाहर आ गया। थोड़ा सा पानी था उसमें कहीं और उसमें मेंढक था। क्यों शिवा, इस मेंढक के दाने पानी का इंतजाम भी तुम ही करते हो ना? अब तो शिवाजी को बहुत मुश्किल में पड़ गए कि इस चट्टान के भीतर मैं कहां दाना पानी देता हूं, ये तो अपने आप कहां से दाना पानी पाके और जी रहा है। मैं ये व्यर्थ अहंकार करता हूं। मेरे ख्याल से इस प्रश्न का ठीक उत्तर हम सबके समझ में आ गया होगा। हमें ऐसे उत्तर को अपने भीतर खोजना चाहिए। ये तो मैंने आपको बंधा बंधाया उत्तर दे दिया, नहीं, अपने जीवन में स्वयं इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर पाने की कोशिश करें कि मैं किसके लिए जीता। तो हमारा अहंकार टूटेगा, हमारा जीवन पहले से हम बेहतर बना सकेंगे। दूसरा प्रश्न वो कहते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीने का उद्देश्य क्या, व्हाट इज द मोटिव ऑफ लाइफ। अगर मेरे जीवन का उद्देश्य अपने स्वार्थों की पूर्ति है, अपने जीवन को भर जीना है, तो ये उत्तर अधूरा है। नहीं, मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ यहां पर जीने अकेले का नहीं है, अपने स्वार्थों की पूर्ति का नहीं है, मैं मनुष्य की तरह जी रहा हूं, तो मेरा इससे भी बड़ा उद्देश्य है कि मुझे अपने उन अनंत गुणों को भी प्राप्त कर लेना है, सिर्फ जीवन को ऐसे जी करके व्यतीत नहीं कर देना है। पहला कर्तव्य मेरे जीवन का, पहला उद्देश्य मेरे जीवन का है, मैं अपने जीवन को इतना रिफाइन करूं, इतना पवित्र करूं कि मैं उस परमात्म तत्व को, जो कि मेरा अपना निजी है, मेरा अपना स्वभाव है, उसको प्राप्त कर सकूं, और उसकी प्राप्ति में मैं किसी दूसरे के जीवन को नष्ट ना होने दूं, दूसरे के जीवन को क्षति ना पहुंचे। देखिए ना, मेरे जीवन का उद्देश्य अपने जीवन को ऊंचा उठाना तो है ही, लेकिन आत्महित के साथ साथ लोक हित की भावना से मैं अपने जीवन को जीऊं, मेरे जीवन का यही उद्देश्य। मैं अपना आत्मा का कल्याण करूं, सिर्फ अपने शरीर के सुख सुविधा के साधन जुटा लेना, ये तो कोई भी जुटा लेता है। एक पशु भी सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज, कहीं ना कहीं ठहरने की जगह खोज ही देता है। भैया, हम में और उसमें खाने पीने और ठहरने की और सोने की जगह खोज लेने वाले, उसमें और हम में क्या अंतर है? नहीं, हम अपने जीवन को और अधिक अच्छा बना सकते हैं, यहां तक कि हम परम विशुद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और अपने उस आत्महित के लिए मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरे का अहित ना, बस मुझे अपने आत्मा का हित करना, ये मेरा उद्देश्य है। और उस उद्देश्य के चलते ये भी बड़े मजे की बात है कि जो व्यक्ति अपने आत्मा का हित करना चाहता है, उसके द्वारा दूसरे का अहित हो ही नहीं सकता। हां, कोई व्यक्ति अगर दूसरे का हित करना चाहे तो उसका अहित भी नहीं हो सकता। ये भी दोनों चीजें एक साथ। आचार्य श्री इसका इतना बढ़िया उदाहरण देते हैं कि देखो, अच्छा, जैसे किसान है और किसान भावना भाता है कि पानी बरसे, पानी बरसे तो पानी तो मेरी अकेले खेत पे थोड़ी बरसेगा, वो तो जब जब भी बरसेगा सबके खेत पे बरसेगा। अब जब मैंने सबके खेत पे बरसेगा, मैंने प्रार्थना करी हो पानी बरसा है, तो मैं सबकी फसल काटूं क्या? नहीं, मैं भावना तो रखूंगा कि पानी बरसे तो सबके खेतों पे पानी बरसेगा, लेकिन जब फसल काटूंगा तो मैं अपनी ही काटूंगा। जब मैं सबके कल्याण की भावना भाता हूं तब भी मेरा ही कल्याण होता है नियम से, और जब मैं अपने कल्याण के लिए कोई प्रयास करता हूं, उद्देश्य बनाता हूं अपने कल्याण का, तब मेरे उस उद्देश्य के साथ एक एडिशनल उद्देश्य और जुड़ा हुआ है कि मेरे जीवन से अब किसी का अहित नहीं होना। आत्महित के साथ अगर लोकहित की भावना से हम अपने जीवन को जिए तो कितना बढ़िया हमारे जीवन का उद्देश्य होगा। और अगर हमें अकेले अपने जीवन की आवश्यकताएं पूरी कर लेनी है, भैया शरीर की आवश्यकताएं पूरी कर लेनी है, तो वैसा जीवन भी जीने के लिए हम फ्री हैं, कोई ऐसी बात तो है नहीं। लेकिन हमारे भीतर जो प्रोबेबिलिटीज हैं, जो पॉसिबिलिटीज हैं, उन पर भी हमें विचार करना है। कितनी पॉसिबिलिटीज, कितनी संभावनाएं हमारे भीतर छुपी, अनंत संभावनाएं छुपी। क्या हमारा उद्देश्य उन अनंत संभावनाओं को उद्घाटित करने का नहीं होना चाहिए? और फिर हमारे अंदर प्रोबेबिलिटी कितनी है? पॉसिबिलिटीज तो अनंत हैं, लेकिन प्रोबेबल कितना है, कितना हम कर सकते हैं, कितना कितना हम उसमें से हमारे जीवन में करना संभव है, शक्य है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। और उसमें कमी नहीं रखें अगर तुम्हारा जीवन इस दूसरे प्रश्न के उत्तर में भी। और जैसे हम इस दूसरे प्रश्न का उत्तर खोजेंगे, हमारा जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। वो कहते हैं तीसरा प्रश्न और पूछें कि मेरे जीवन का कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ लाइफ। मैं जैसा जीवन जी रहा हूं उसका कोई ना कोई कारण तो होगा, बिना कारण के तो कोई कार्य होता नहीं। मैं अगर मनुष्य की तरह जी रहा हूं या कोई पशु की तरह जी रहा है या कि किसी के अंदर देवत्व है, कोई गरीब की तरह जी रहा है, कोई अमीर की तरह जी रहा की तरह जी रहा है, नाना प्रकार से सब जीव अपनी अपनी तरह से जी रहे हैं, इसका कोई ना कोई कारण है क्या? कारण का विचार करना चाहिए। हम कारण का विचार ना करके और समानता की बात अगर शुरू कर देते हैं तो हमारे जीवन में मुश्किल खड़ी होती है। कोई अगर हमसे अधिक अच्छे से जी रहा है, हम फौरन कह देते हैं जी नहीं सकता, हम ही अच्छे से जी रहे हैं। नहीं, वो अगर अच्छे से जी रहा है तो उसके पीछे कोई कारण, मैंने अपने जीवन को अगर बुरा बना लिया है तो उसके लिए भी कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, मेरे ही भीतर उसका कारण है, कोई ना कोई कारण है। लेकिन आज हम बहुत जल्दी कंसोलेशन कह लीजिएगा या और कह लीजिए सांत्वना दे लेते हैं अपन, कि अरे संसार ऐसे ही है भैया, इसमें सब पक्षपात चलता है, धर्म के क्षेत्र तक में पक्षपात चलता है, देखो तो जो जो पैसा वाले हैं उन्हीं को आगे किया जाता है, यहां भी पक्षपात है, हम तो गरीब हैं। लेकिन उसके साथ हम ये नहीं सोचते हैं कि ये जो हम कह रहे हैं वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, मैं इसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग मानता हूं। ये हम दूसरे के भावनाओं के साथ अपनी इस तरह की बात कहके कि मैं तो गरीब हूं, ये क्यों नहीं सोच रहा हूं कि मैं गरीब क्यों हूं, मेरे पास जो चीज दूसरे के पास है वो क्यों नहीं है, मैंने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया है कि वह चीज जो दूसरे के पास दिखाई दे रही है वो मेरे पास क्यों नहीं है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो धन संपदा हो, चाहे वो शरीर की सुंदरता है, और भी बहुत सारी बातें, इन सब के पीछे अगर हम थोड़ा सा, तब फिर क्या होगा, किसी से गिला शिकवा शिकायत नहीं होगी, बड़े प्यार से जिएंगे, किसी के भी गुणों को देख करके ईर्ष्या नहीं होगी, लैप पुलिंग नहीं होगी, किसी को भी जो है पीछे टांग खींचने की प्रवृत्ति नहीं जागृत होगी। और ये सारी प्रवृत्तियां हमारे जीवन को गंदा ही बनाती हैं, बेहतर नहीं बनाती। हम सोचते हैं कि ऐसा तो है ही संसार नहीं, हमारी दृष्टि ही ऐसी है, हमने कभी इस कारण पे विचार नहीं किया और अपने को जिम्मेदार ही नहीं माना उसके लिए। हमको बहुत आश्चर्य हुआ था एक बार जब दमोह पहुंचे, उसी समय मालूम पड़ा, कुंडलपुर जा रहे थे आचार्य महाराज के पास, हमारा अपना जीवन हमने कैसा बना लिया है, उसका कारण हमारे ही भीतर है, कहीं बाहर नहीं है। तब समाचार मिला था कि इतना बड़ा भूकंप आ गया और इतने लाखों लोग उसमें मर गए, तब ऐसी खबर सुनने के बाद क्या हम लोग को कोई धक्का लगा था भीतर? ईमानदारी से देख कैसा तो हमारा जीवन हो गया है, जरा भी धक्का नहीं लगा, हाँ मर गए, कितने मर गए होंगे इस बात पे विचार कर रहे हैं, कितने मर गए होंगे, अरे सरकारी आंकड़े ऐसे ही रहते हैं, बहुत ज्यादा मरे होंगे तब इतने आंकड़े दिए। लेकिन जब एक भी कोई मरता है तो मेरी आंख नहीं भीगती है, कोई आंसू नहीं आता, इतना जरूर है कि जरा सा ध्यान आया था कि गुजरात में वो जो अपने एक व्यक्ति थे, अरे फोन लगाओ उनका क्या हुआ, अब अगर वहां से ये खबर आ जावे कि वो जो अपने थे उनको कुछ हो गया है तो संभव है कि आंसू आएगा, बाकी दुनिया भर को कुछ भी हो अपने को क्या फर्क। हम जिस संवेदनशीलता की बात करते हैं वो हमारे भीतर गायब हो गई है, क्या कारण है इस पे विचार किया? नहीं, हम इस तरह अपनी जितनी भी अच्छाइयां हैं उनको अपने हाथ से किल कर चुके हैं, अपने हाथ से उनको मार चुके हैं और कोई वजह नहीं। इसमें कौन सा कारण है मुझे बताओ? किसी की आंख भीग गई है, किसी की नहीं भीगी है, क्या कारण है? जिसकी चेतना जैसी है वो वैसी ही बाहर अभिव्यक्ति करेगा। हमारे जीवन में जो अभिव्यक्ति हो रही है, हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, उस सब के लिए कोई कारण हमारे ही भीतर है। हम अगर दुखी हैं तो दुख का कारण मेरे भीतर है, बाहर कहीं कोई मुझे दुखी नहीं बना रहा, ना कोई दुखी बनाने का उपाय कर रहा है। लेकिन लगता यही है कि सारा संसार जैसे मुझे दुखी बनाने में जुटा हुआ, और जब जब मैं सुख का अनुभव करता हूं तब फिर सबको हटा देता हूं। सुख का अनुभव तो मैंने अपनी मेहनत से किया है। ये जो डुअलिस्टिक नेचर है, ये जो दोहरा नेचर है, कारणों के बारे में विचार करने की दोहरी पॉलिसी है ये। जब मेरे ऊपर दुख आता है, मैं दुखी होकर के जीवन जीता हूं, मैं खराब जीवन जीता हूं, तो उस सब में दुनिया भर को जिम्मेदार मानता हूं, और जब मैं ठीक ठीक जीवन जीता हूं, सुखपूर्वक जीता हूं, तो वो मेरी अपनी जिम्मेदारी, वो मैंने खुद अर्जित किया है, किसी और ने मुझे कुछ नहीं। कितने मजे से हम इस तरह कारण का विचार करते हैं। जरा विचार करिएगा कि अगर सुख और दुख जो भी इस संसार में मुझे मिले, भला और बुरा, मैं जैसा भी हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, जिस स्थिति में जी रहा हूं, उस सारी स्थितियों के लिए मैं जिम्मेदार, कारण मेरे भीतर ही है, कारण कहीं बाहर नहीं। इस तरह अगर अपन विचार करें कि मेरी मौजूदा हालत का कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रेजेंट लाइफ, मेरे इस जीवन का कारण क्या है, जैसा मैं जीने के लिए, क्या मैं मजबूर हूं, या कि मेरी अपनी कमजोरी है, या कि मेरा अपना चुनाव है, मैंने ऐसा ही जीना पसंद किया है शायद, इसलिए मैं ऐसा जी रहा हूं। और वो कहते हैं कि एक बात और अपने से पूछना कि अपने जीवन में अच्छे और बुरे को जानने का मकसद क्या है, ये मेरिट है, ये डिमेरिट है। मैं ये जानता हूं कि अच्छा है और ये बुरा है, इस जानने का मकसद क्या है? वो तो कोई भी जान देता है, कोई भी कह देता है कि ये विष है और ये अमृत है, लेकिन विष को विष जान करके उसके सेवन से बचना, तब मालूम पड़ेगा कि आपने विष को विष जाना है और अमृत को अमृत जानना, यानी उसकी उपाय करना प्राप्ति के। अगर आप ये जानते हैं, हम जानते हैं कि ये बुरा है और ये अच्छा है, तो फिर हम अपने आप से पूछें कि अच्छा और बुरा जानते भर हो या उससे कोई लाभ लेते हो, वरना तुम्हारा जानना और नहीं जानना क्या मायने रखता है? मैं अगर अच्छे को अच्छा मानता हूं तो मेरे जीवन में वो कितना आया है, और मैं अगर बुरे को बुरा मानता हूं तो मेरे जीवन से कितना कम हुआ है, इस पर मुझे विचार करना चाहिए। तब तो कहलाएगा कि मैं पाप और पुण्य सबको जानता हूं, कि ये पाप है और ये पुण्य है, लेकिन मैं पाप और पुण्य को जानते हुए भी पाप को नहीं छोड़ता हूं और पुण्य को के कार्यों से बचने की कोशिश करता हूं, तब तो फिर इसका मतलब है कि मेरे पुण्य और पाप दोनों को जानना ही व्यर्थ है। ये बात जुदी है कि जब मैं इस पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठने की कोई प्रक्रिया शुरू करूंगा, तब विचार नहीं करूंगा कि क्या पुण्य और क्या पाप है। लेकिन जब तक कि मुझे करने के लिए दो में से कुछ एक चुनना पड़ता है कि या तो भला या कि बुरा, तब मैं बुरा क्यों चुन लेता हूं, जबकि मैं जानता हूं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अरे भाई, जो व्यक्ति नहीं जानता है कि क्या भला है और क्या बुरा है, जो अज्ञानी है, वो अगर कुछ भी करे तो करे, लेकिन हम और आप जब जानते हैं कि ये भला है और ये बुरा है, तो उसमें से बुरा क्यों चुनते हैं, भला क्यों नहीं चुनते? इतनी छोटी सी बात विचार करने के लिए है, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम विचार कर रहे हैं, तो अपने से अपने आप से कहीं कोने में बैठ के, ये तो अपन सामूहिक रूप से कर रहे हैं, कोई हर्जा नहीं है इस तरह विचार कर लेने में भी, पर इससे एक दिशा मिलेगी और आप स्वयं घर जाके बैठ के आप होमवर्क भी किया करिएगा। हाँ, अकेला ऐसा नहीं कि आप हमसे लेसन लेके चले और होमवर्क करे नहीं आपने। होमवर्क बच्चों को मिलता है कि नहीं मिलता है? हम घर जाकर इन बातों पर जरूर विचार करें और इन बातों के विचार करने से जीवन में परिवर्तन आए बिना नहीं रहेगा। हम कहते हैं कि 0.1% आएगा, चलो ठीक है, हम ये कहां कह रहे हैं कि 100% आ जाएगा, अब भी आप हमारी बात सुनेंगे और वहां जाएंगे और बहुत भले हो गए आप, ऐसा तो नहीं है। कितनी जिंदगी मन लग जाएगी, लेकिन जिंदगी में अपने एक विचार तो हो हमारे पास कि नहीं, मुझे क्रम क्रम से जितना बने उतना मुझे अपने जीवन को भला बनाना है, भलाई की तरफ ले जाना है, मैं बुराई से हटूं और भलाई की तरफ जाऊं और धीरे धीरे बुरे और भले के बीच में समता रख सकूं, दोनों स्थितियों से ऊपर उठ सकूं, ये मेरा अपना लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य तो पवित्रता ही है, लेकिन जब जब मुझे भले और बुरे में से चुनने के लिए कहा जाए तो मैं भला ही चुनूं, क्योंकि बुरा चुन लूंगा तो मैं कभी पवित्र हो ही नहीं पाऊंगा, अच्छा चुनूंगा तो पवित्रता के लिए आगे बढ़ सकता हूं। जैसे कि मैं नदी के किनारे आऊं ही नहीं तो मैं नदी में नहाने का मजा कैसे लूंगा और फिर जंपिंग बोर्ड पे खड़ा हो जाऊं। पुण्य तो जंपिंग बोर्ड है कि आप कूद जाइएगा उस पर से। हां, भला होना जो है वो अपनी पवित्रताओं में जंप करने का एक मीडिया है। बरम व्रतई पदम दैवई दैवम ना व्रतई व्रत नारकम शाया तपस्थयोर वेदा। अब आगे की लाइन भूल गए, शिवोपम का मामला है, रोज पढ़ते हैं निपट। हम बीच बीच में आपको ऐसी बात इसलिए कह देते हैं कि अपने छोटे से ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए, व्यर्थ है, किसी भी क्षण गायब हो जाता और जब नए सिरे से कि जैसे कि दो लोग इंतजार में खड़े हैं राजा के, एक छाया में और एक धूप में खड़े दोनों हैं। तो बेहतर है कि छाया में खड़े हों, बेहतर है कि भला कुछ करें, अभी जबकि मुझे उस अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई है जिसका मेरा श्रद्धान है, मजबूत है, जो मेरा अपना लक्ष्य है। तब फिर मैं जब बुरे और भले को जानता हूं अपने उस लक्ष्य के चलते, तब इस भले भले और बुरे में से मैं भले को चुनूं और बुरे को हटाता चला जाऊं। और फिर वो कहते हैं, पांचवा प्रश्न पूछें कि व्हाट इज द वे ऑफ लाइफ, हमारे अपने जीने का वर्तमान ढंग क्या है, जैसा कि हमारा लक्ष्य है। हमने लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया कि हमारे जीवन का लक्ष्य यह है, हमारे जीवन का उद्देश्य यह है, लेकिन जरा विचार तो करें कि मैं उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूं कि नहीं बढ़ रहा हूं। मेरा अपना जो वर्तमान का जीवन है उसमें उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए कोई प्रयत्न हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि मैंने सिर्फ एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया। बड़े बढ़िया विचार करके लिखा होगा, मुझे तो यही लगता, जब मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा कि सचमुच हम सबको ऐसे ही अपने जीवन के बारे में इतने प्रश्नों पर विचार, और इनके उत्तर उधार के उत्तर नहीं, मैंने उत्तर दे दिए इसलिए आपके लिए भी यही उत्तर काम आएंगे, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप अपने उत्तर खुद खोजिए, अपने जीवन में खुद विचार करिए कि मैं अपने जीवन को जिस तरह जी रहा हूं, क्या मैं अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा हूं, या कि सिर्फ मैंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया और जीवन चाहे जैसा जीता रहूं। मैं पवित्रता का लक्ष्य बना के और अपवित्र होता रहूं। अरे भैया, कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि मुझे अपने घर पहुंचना है और वो अपने घर की तरफ तो रखे एक कदम और अपने घर से विपरीत 100 कदम रखे, बताइए मुझे वो कब पहुंचेगा अपने घर? नहीं, उसका तो लक्ष्य है कि वो अपने घर पहुंचेगा, उसने तो तय करके रखा है, वो चल भी रहा है। नहीं, चल तो रहे हैं हम, लेकिन अपने घर की तरफ चल रहे हैं या कि उसके विपरीत दिशा में? हम कहते हैं कि चलो नहीं चल पा रहे हैं अपने अपने घर की तरफ, लेकिन कम से कम विपरीत दिशा में तो ना चले, अपने स्वभाव के विपरीत हम ना जाए, इतना तो हम कर ही सकते हैं। हम अपने लक्ष्य के विपरीत ना जाएं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। हम अपने लक्ष्य की तरफ ही रोज कदम बढ़ाते जाएं। मुझे अगर अपने जीवन को बेहतर बनाना है, मुझे अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाना है, तो मैं रोज रोज देखूं कि कल जिन बातों पर मैंने अपने मन को मलिन कर लिया था, आज फिर वैसा ही तो नहीं कर रहा हूं। बस इतना ही, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। कल जरा सी बात पर उन्होंने मेरे बिना पसंद की बात कह दी थी, मैंने कितना गुस्सा करा था, वो गुस्सा करने से उनका क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बल्कि मेरा इंप्रेशन और खराब हो गया उस आदमी के अंदर। और इतना ही नहीं, मेरा मन भी तो कितना कलुषित हुआ, कितना संक्लेशित हुआ, बात तक अभी तक रख रहा है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बताइएगा, जब मैं इतना विचारवान हूं, इतना सब विचार कर रहा हूं, तब फिर मुझे जरूर उस समय विचार करना चाहिए जिस समय मैं अपने जीवन के अच्छे बनाने के विपरीत दिशा में कोई बात करता। और आखिरी बात वो कह रहे हैं कि ये तो हुए 5 प्रश्न अपने जीवन के बारे में, 6वां प्रश्न ऐसा लगता है जैसे जीवन के बारे में ना हो, पर वो कह रहे हैं कि ये भी पूछिएगा अपने मन से, अपने आप से, कि मृत्यु क्या है, मृत्यु क्या चीज है। ठीक है, हम जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लोग जीते जीते और जीवन स्थगित करके चले जाते हैं हमारे सामने सामने। कोई कोई जीवन पूरा करके चले जाते हैं, कोई अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, कोई तो जीने से इनकार करके चले जाते हैं। हां, वे निराश लोग हैं जो जीवन से निराश होकर जीवन से जीने से इनकार कर देते हैं, ऐसे लोग भी देखने में आते हैं। कैसे भी हो, लेकिन ये मृत्यु चीज है जो कि जीवन के साथ लगी हुई है। मुझे इस पर भी विचार करना है, ये आएगी किसी ना किसी दिन, मेरे इस जीवन के जीते जीते आएगी, मुझे मालूम भी नहीं पड़ेगा कि किस क्षण आ गई, ना कोई आने की वार्निंग मिलती है। जिस क्षण आ जाती है तो बस तैयारी का मौका भी नहीं देती कि बांध दो अब चलना है। लगा लिया हो नाश्ता वास्ता, अटैची तैयार हो अगर तो चलो, 5 मिनट भी अटैची लगाने के लिए नहीं है। अगर हम किसी यात्रा पर निकलते लंबी यात्रा पे तो इतना तो हमारे पास समय होता है कि हम अपनी रास्ते की तैयारी कर ले गए, लेकिन मृत्यु जब आती है और एक नई यात्रा शुरू होती हमारी, तो उसके लिए हमारी कोई तैयारी हम उस समय नहीं कर सकते। इसलिए क्यों ना बेहतर हो कि जब हम जी रहे हैं तो मृत्यु के बारे में ठीक ठीक समझ ले। जीवन जीना उसी का सार्थक है जो मृत्यु को ठीक ढंग से समझता है। विनोबा कहते थे कि सुनो, मैं जीवन भर तुम कैसे जिए, ये जीवन भर जीने की स्टाइल को देख के नहीं पता करूंगा, मैं तो तुम्हारे मरने की स्टाइल देख के पता करूंगा कि तुम कैसे जिए हो। बताइए, आपके मरने से मालूम पड़ेगा कि आप कैसे जिए हो, आप कितनी तृप्ति और कितनी शांति और कितने समत्व के साथ अगर अपने देह को छोड़ रहे हैं, जैसे कि कोई नए वस्त्र आने पर पुराने शहर छोड़ देता है, ठीक इसी तरह से अगर हम जीवन जी रहे हैं, ये विचार अकेला हमारे भीतर की मृत्यु क्या है, अगर मृत्यु समय घबराहट है तब तो फिर जीना स्थगित ही है, समझ लीजिए फिर तो हम जिएंगे क्या, मरे ही मरे जिएंगे, मरने से पहले मर जाते हैं अपन। हां नहीं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम समझें कि जीवन क्या है, हम उस चेतना का सम्मान कर सकें जो जीवन और मरण के बीच अपना रास्ता तय करती है। जन्म और मरण के बीच जो चेतना है, अगर उस पर हमारा ध्यान रहे, वो चेतना हमारी ठीक ठीक रहे, वो बची रहे, शरीर जन्म लेता है शरीर मरता है, चेतना तो पहले भी थी और इस शरीर के नहीं होने पर किसी और शरीर में रहेगी, या शरीर से मुक्त हो जाए तो अशरीरी होकर रहेगी, लेकिन रहेगी, मुझे इस बात का विश्वास होना चाहिए। मैंने जन्म नहीं लिया था, मेरे शरीर में मैंने अपने जीवन की शुरुआत की थी, जैसे सनराइज सुबह सूरज उगता है, जैसे कि शाम सूरज डूब जाता है, ऐसे ही मैं एक नए शरीर में अपनी यात्रा शुरू करता हूं, फिर वो शरीर जीर्ण शीर्ण होकर गिरता है, मैं नए शरीर, जितनी आसक्ति मेरे शरीर के प्रति होगी उतनी बार मुझे शरीर मिलेगा, और जितना मैं शरीर को आसानी से छोड़ दूंगा उतना ही मैं शरीर से मुक्त हो जाऊंगा, इतना सा ही उपाय है। जीवन जीने का यही ढंग है। इसके लिए एक उदाहरण सुनाऊं कि हम लोग चेतना का सम्मान नहीं कर पाते हैं, हम लोग इस शरीर और इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, इस वजह से शायद हम मृत्यु से भयभीत होते हैं, या मृत्यु के समय हमें अपने जीवन से असंतोष रह जाता है। नहीं भैया, जीवन भर भी संतोष पूर्वक जिए और मरण उपस्थित हो तब भी, क्योंकि मुझे जो करना था मैंने सब कर दिया, मुझे अब करने को कुछ शेष ही नहीं रहा, जिन्हें कुछ करने को शेष रहा हो वे घबराएं। जैसे कि अपन पहली कक्षा पास कर लेते हैं तो दूसरी पहुंच जाते कि नहीं पहुंच जाते, फिर अपन ये तो नहीं सोचते कि अरे हमको पहली कक्षा इतनी बढ़िया थी और हमको काय को आगे भेज दिया दूसरी कक्षा में, नहीं, पहली कक्षा पास, संसार की कक्षा पास होकर के और हम अगर अपने मुक्ति की कक्षा में पहुंच जाएं तो वही हमारा अपना जीवन का उद्देश्य है। क्या हुआ, विदेश में एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी में और बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों के और बहुत से आर्ट, बहुत से चित्र वहां पर प्रदर्शनी में लगाए गए। एक चित्र तो इतना सुंदर चित्र था कि सब वहां ठहर जाते थे, कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता था, लोग आकर के पूछते थे कि ये चित्र क्या, ये चित्र इस आर्ट गैलरी में बिकने के लिए है क्या, वो कहते थे कि हां बिकने के लिए है, तो इसकी क्या कीमत है, ऐसे तो हम कैसे बता दें कि क्या कीमत है, आप बताइए कितनी कीमत है, और होते ना होते जितने भी लोग थे कीमत बढ़ाते चले गए बढ़ाते चले गए। वो उतना छोटा सा चित्र जिसे कोई सोच नहीं सकता था वो $3,00,000 में बिक गया, $3,00,000, बहुत बड़ी राशि होती है। अब जिसने खरीदा, लोग उसके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं कि थोड़ा एक झलक दिखा दो, हम खरीद नहीं पाए। और वो व्यक्ति जिसने खरीदा है वो चित्र, वो आर्ट गैलरी से बड़े आनंद से बाहर निकल रहा है, उसके साथ ही एक उस चित्र का को बहुत सुंदर जिसको लगा था वो भी उसके साथ चला जा रहा है। अचानक वो चित्र देखता है और आर्ट गैलरी के बाहर बैठे हुए भिखारियों की कतार देखता है और उस कतार के बीच में एक व्यक्ति पर उसकी दृष्टि रुक जाती है। वो फिर चित्र देखता है, फिर उसे देखता है। वो एक मां है जिसके गोद में बेटा है और वो उसे दूध पिला रही है। वह चित्र भी वैसा ही है, एक मां है वो अपने बेटे को दूध पिला रही है, फटे चिथे कपड़े पहने हुए हैं, वो दंग है। वो कहता कि ठहरो थोड़ा, ठीक यहां ठहरो, मुझे एक बार चित्र और इसे देखने दो। और सचमुच जिस मां को देख करके वो चित्र बनाया गया था, जिस भिखारी को देख करके वो चित्र बनाया गया था, बिल्कुल वही का वही वो एक एक दाने के लिए बाहर भीख मांग रहा है। चेतना एक एक दाने के लिए तरसती है और चेतना के इर्द गिर्द जो कुछ भी है उसकी कीमत बहुत बहुत होती है। उसने एक बहुत बड़ा संदेश लोगों को दे दिया कि आपने $3,00,000 का तो ये चित्र, इसी मां का चित्र जो फटे चिते हाल में बैठी है, जिसको खाने के लिए अपने बेटे को खिलाने के लिए एक दाना नहीं है, उसका चित्र हमने इतनी कीमत दे करके और हासिल किया है। हम देखें अपने जीवन में भी इसी तरह कि जिस चीज की हम कीमत दे दे करके अपने उस चेतना को पतित कर रहे हैं, उस चेतना से बेखबर हैं, उस चेतना निरंतर जो मरण की तरफ चली जा रही और हम बाकी सब चीजें उस चेतना के इर्द गिर्द उनको कीमती समझ करके उन्हीं में खोए हुए हैं, क्या इस तरह से हम अपनी मृत्यु को स्वयं ही व्यर्थ नहीं किए जा रहे हैं? क्या हम इस तरह अपने जीवन को व्यर्थ नहीं बनाते चले जा रहे हैं? बस इस बात का जरूर हमें इस घटना से विचार करना चाहिए। पता नहीं सच्ची घटना है या नहीं, मुझे तो लगता है शायद ये घटना सच्ची है। हमारे अपने जीवन में रोज घटती है कि हम उसी व्यक्ति का चित्र तो बहुत अच्छे से लगाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति मिल जाए तो उससे से हम हो सकता है कि प्रेम से बात भी नहीं करना पसंद करेंगे। हम उस व्यक्ति के मरण में इतने बढ़िया से शामिल होकर के और उसकी श्रद्धांजलि चढ़ाएंगे, हो सकता है कि हमने जीवन भर उस व्यक्ति से एक भी प्यारा शब्द ना कहा, हम उसके कोई काम ना आए। हमें विचार करना होगा कि मृत्यु होने से पहले क्या मृत्यु के बारे में मेरा अपना विचार ठीक ठीक है, जीवन के बारे में मेरा विचार किस तरह का है। अगर इन सब बातों पर हम विचार करें तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा मुश्किल है अपने जीवन को बेहतर बनाना। आइए अब हम सब लोग कोशिश करें कि हमारा जीवन अच्छा बने और इसमें से जिसको भी जो प्रयत्न अच्छा लगे उस प्रयत्न से शुरू करें। मैं भी आपके साथ, हम भी कर रहे हैं, सबको करना है। कोई यहां परफेक्ट नहीं है सिवाय भगवान के, लेकिन परफेक्शन हमारी अपनी क्वालिटी है, हमारा अपना नेचर है, वो हमारी अपनी अंतिम हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उस तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते चले जाएं, इसी भावना के साथ मेरे साथ नमोकार करें। ओ अहंता। സിദ്ധാടും. ഓം നമോ ആയര്യാടും ഓം നമോ
ആചാര്യ ഗുരുവർ വിദ്യാസാഗർ മുനി മഹാരാജ്.